श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 1 और 2। प्रकृति पुरुष तथा चेतना। अर्जुन वाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् विदुतुम इच्छामि ज्ञानम गेयम च केशव। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी कि भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं। दूसरे श्लोक में प्रश्न स्पष्ट हो रहा है, प्रकृति क्या है। और आपको याद होना चाहिए कि भौतिक प्रकृति का भी एक टॉपिक है। भगवद्गीता के 5 टॉपिक में से विषयों में से एक विषय है प्रकृति। प्रकृति और पुरुष यानी कि किस प्रकार से जीव भोग कर रहा है प्रकृति का और उसके बंधन में पड़ रहा है, एक। उसके बाद क्षेत्र और क्षेत्र के। क्षेत्र मतलब जैसे खेत होता है और खेत को जानने वाला, खेत का ज्ञा मतलब जानने वाला, क्षेत्र मतलब खेत, क्षेत्रज्ञ मतलब खेत को जानने वाला। तो खेत क्या है और खेत को जानने वाला क्या है। अब कहेंगे, आप कहेंगे खेत की बात कहां से आ गई, तो अभी तात्पर्य को जब पढ़ेंगे तब समझ जाओगे। और ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान क्या है और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य वस्तु है क्या। ये बहुत सुंदर टॉपिक है फिलॉसफी में। ये बहुत मुश्किल चीज होती है समझना कि नॉलेज क्या है, व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है। वो तो मनो मानसिक उपोह करते रहते हैं तो समझ नहीं पाते, लेकिन भगवद गीता में स्पष्ट बताया गया है, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तो यहां भगवान पहले अपना उत्तर दे रहे हैं कि ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। ये हमारा शरीर है, ये क्षेत्र खेत के से, इसकी उपमा खेत से की जा रही है, खेत की तरह है। और इसको हम अपने शरीर को जानते हैं, जीवात्मा जानता है और भगवान भी जानते हैं। तो इस शरीर में 2 क्षेत्रज्ञ हैं, जीवात्मा और भगवान। तो इस खेत का, हमारे शरीर रूपी खेत का जानने वाले 2 लोग हैं, मैं यानी जीवात्मा और भगवान, तो वो क्षेत्रज्ञ हैं। तात्पर्य, अर्जुन प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्षेत्र मतलब शरीर जो है वो खेत से उसकी उपमा कर रहे हैं और जीवात्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ है, यानी शरीर के दुख सुख दुख का अनुभव जीवात्मा करता है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है, मतलब इस शरीर के द्वारा ही हम कर्म करते हैं और उसके अनुरूप हमें कर्म बंधन लगता है, या फिर भगवान के लिए कर्म करते हैं तो कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन इसका संपादन शरीर के द्वारा होता है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है। अर्थात बद्ध जीव का अर्थ है वो जीव जो अपने को शरीर मानता है अविद्या के कारण, हम सभी लोग। और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का अर्थ है भौतिक वस्तुओं को भोग्य मान करके उनको भोगने का प्रयास करना अपनी इंद्रियों से। ओके, इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त हुआ है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है, अर्थात इस जगत को भोगने की इच्छा के कारण हमें विभिन्न प्रकार के शरीर मिले हैं। और हर व्यक्ति को जो शरीर मिला है वो उसके पूर्व शरीर में के अनुसार किए गए कर्म जो उसके मन में इच्छाओं का निर्माण करते हैं उसके अनुसार मिला है। और यह शरीर क्या है, शरीर इंद्रियों से बना है, आंख नाक कान, समझते हैं इसका अर्थ। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म श्रेत प्रदान किया जाता है। थोड़ा समझ लीजिए, जैसे कोई मांस खाना चाहता है तो उसको शेर का शरीर दे दिया जाएगा, कोई बहुत खाना चाहता है तो उसको हाथी का शरीर दे दिया जाएगा, कोई बहुत इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है तो कबूतर का शरीर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से विभिन्न इच्छाओं के अनुसार व्यक्ति को विभिन्न शरीर और इंद्रिय प्राप्त होती हैं। इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। तो अभी समझ में आ गया होगा। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ये भी स्पष्ट बात है कि ज्ञा मतलब क्षेत्र मानना। हम शरीर के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन अज्ञान वहां पे नहीं समाप्त होता। हम शरीर को मैं मानने लगते हैं, हम ये मानने लगते हैं कि मैं शरीर है, तो ऐसा व्यक्ति क्षेत्रज्ञ कहलाता है, बद्ध जीव। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। अब प्रभुपाद ने बताएंगे किस प्रकार से हम ज्ञान के द्वारा समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। बहुत सुंदर बात है, कई बार हम इसको प्रचार में इसको बताते हैं तो लोगों को समझने में बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन देखिए कि हमारी माँ, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे प्रति उसी वात्सल्य का अनुभव करती हैं जैसा हम बचपन में हमारे प्रति करती थी। क्यों करती हैं ऐसा? हम जिस तरह से पैदा हुए थे, जिस शरीर को लेकर पैदा हुए थे, क्या उस शरीर को लेकर के हम लोग वैसा शरीर हमारा दिखता है? वैसा शरीर तो नहीं दिखता है। तो अब आप देखिए कि शरीर तो पूरी तरह परिवर्तित हो गया है, फिर भी हमारी माँ या हमारे पिताजी या हमारे रिश्तेदार कहते हैं नहीं तो वही व्यक्ति है। तो कौन वही व्यक्ति है? अर्थात क्षेत्रज्ञ, जो जीवात्मा है वह वही है, भले ही क्षेत्र में परिवर्तन आ गया है, शरीर में परिवर्तन आ गया। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता और वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है, अर्थात जीवात्मा में और शरीर में अंतर है। ये जब तक व्यक्ति नहीं समझता है तब तक उसकी कोई आध्यात्मिक प्रगति की संभावना ही नहीं है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में भी बताया गया है कि देहिनो अस्मिन, जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है, और शरीर धारी यह जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। आप सब लोग जानते हैं, इस संबंध में एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। जैसे आप लोग कभी गंगा जी के पास बैठे हों या यमुना जी के पास बैठे हों तो आप महसूस करेंगे कि मेरे सामने जल है, लेकिन हर क्षण जो आपके सामने जल है वो परिवर्तित हो रहा है। ऐसे ही अग्नि आप रोज देखते हो, या मान लीजिए मोमबत्ती देख रहे हैं, मोमबत्ती की जो लौ है उसको आप देख रहे हैं, तो हर क्षण आपको लगता है कि मैं उसी अग्नि को देख रहा हूं जो मैं पहले देख रहा था, लेकिन हर क्षण अग्नि परिवर्तित हो रही है। उसी प्रकार से हर क्षण हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है, लेकिन हमको लगता है नहीं तो वही शरीर था जो कल वाला है, जबकि हर क्षण हमारे बाल उग रहे हैं, हमारे नाखून उग रहे हैं, हर समय हमारे शरीर में कोई ना कोई परिवर्तन है, लेकिन मैं आत्मा इस परिवर्तन को जो देख रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये बात ओके। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। उपाधि का अर्थ है हम ऐसा मान रहे हैं, यही बद्ध जीव का भावना है। मानना कि मैं कुत्ता हूं, बिल्ली हूं, या पुरुष हूं, स्त्री हूं, या सुखी हूं। सुखी कब हूं? जब हमारे शरीर में कोई कष्ट नहीं होता है या हमारा मन थोड़ा सुखी रहता है तब हम अपने आप को सुखी मानते हैं। तो यानी कि अपने शरीर और मन की सुख दुख की भावना को अपने सुख दुख से एक करना, एक भावना करना। तो इस कारण से ये ऐसी जो भावनाएं हैं वो ऐसे जो जो इस प्रकार की भावनाओं से ग्रसित है उसको हम क्षेत्रज्ञ कहेंगे। भले ही हम तरह तरह की वस्तुओं पर प्रयोग में लाएं जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। ये तो स्पष्ट है कि मैं कुर्ता नहीं हूं, अपना धोती नहीं हूं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करके करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। बहुत सुंदर है, बुद्धि का उपयोग करके पहले व्यक्ति ये निर्णय ले ले कि मैं शरीर नहीं हूं, क्षमा कीजिएगा, मैं कपड़ा नहीं हूं। तो उसी प्रकार से हमारे जो खाल है वो भी एक कपड़े की तरह है। तो क्या मैं अपनी चमड़ी हूं? क्या मैं अपनी हड्डी हूं? क्या मैं अपने पांव हूं? इस प्रकार से विचार करे व्यक्ति तो समझ जाएगा कि वो शरीर नहीं है। इस प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और वह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। अर्थात हमारा शरीर कर्म क्षेत्र है, खेत है, इस खेत में हम लोग बहुत सारी फसलें उगाते हैं और फसल है वो कर्म, जो कि विभिन्न इच्छाओं के रूप में परिणत होती है। हम कुछ कार्य करते हैं उसके द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की इच्छाओं, हमारे वो इच्छाएं हमारे हृदय में उसमें निर्माण होता है, और फिर उन इच्छाओं के अनुसार हमें फिर आगे और शरीर प्राप्त होते हैं। भगवद गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है कर्मयोग के माध्यम से। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन हुआ है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। यानी कि जो शुरुआत के 6 अध्याय हैं उसमें कर्मयोग के द्वारा व्यक्ति मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो भक्ति योग है इसके द्वारा सीधे भगवत प्राप्ति होती है। तो यहाँ ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं कि शुरुआत के 6 अध्यायों के द्वारा व्यक्ति समझता है कि वो शरीर नहीं है, इस कारण से वो भोग करने की बजाय अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने का प्रयास करता है और इस प्रकार से वो मुक्त होता जाता है क्रमशः। लेकिन जो भक्ति का प्रोसेस 6 अध्याय में बताया गया है यानी कि 7 से लेकर के 12, उसमें डायरेक्ट भगवान का साक्षात्कार होता है। केवल मुक्ति ही प्राप्त नहीं होती है, मुक्ति एक अनुसंगिक फल है भक्ति करने का। ये बात मैं बार बार बोलता रहता हूं ताकि आपको याद रहे कि हम लोग भक्ति मुक्त होने के लिए नहीं करते हैं, भक्ति करते हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए। साधना भक्ति के द्वारा प्रेम भक्ति प्राप्त होती है और अपने आप ही अनुसंगिक फल के रूप में जीव मुक्त हो जाता है, उसे अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कर्म योग व्यक्ति कर रहा होता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वो कर्म फल से मुक्त हो जाए, बंधन से मुक्त हो जाए। योगी न कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धे, योगी न जन कार्य करते हैं ताकि उनका आसक्ति से रहित होकर ताकि वो शुद्ध हो जाए। जब पुण्य कर्मों के द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्थ धनहीन जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचते हैं, इसका भी वर्णन हुआ। ये आप लोग को याद होगा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नु अर्जुना आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। कि जब इस प्रकार से कोई दुखी होता है, धन की इच्छा रखता है, जिज्ञासु होता है, ज्ञान चाहता है, और अगर उसने कोई पुण्य किया रहा होगा तब वो भगवान की तरफ आएगा, भगवान उसको प्रेरणा देंगे। अन्यथा इस प्रकार की श्रद्धा भगवान की तरफ निर्माण नहीं हो पाती है अगर उसके जीवन में पुण्य नहीं है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है लेकिन वह किस तरह उसके संबंध हो जाता है इसकी भी व्याख्या की गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से भौतिक प्रकृति में हम उलझ जाते हैं या उलझ रहे हैं या उलझ गए हैं इसकी व्याख्या होगी और कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं इसकी व्याख्या भी की जाएगी। तो हम सभी के लिए बहुत अच्छा है, इसकी हम लोग चर्चा करना प्रारंभ करेंगे।